एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने, आप सोचिए, लगभग 500 साल पहले शिष्टाचार, सुंदरता और एक आदर्श इंसान होने का मतलब क्या है, इस पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी।
जी,
हम बात कर रहे हैं बाल्डेसर कैस्टिलियोनी की मशहूर रचना द बुक ऑफ द कोर्टियर, यानी दरबारी की किताब।
जी हाँ, और ये बस कोई एटिकेट की किताब नहीं है कि हाथ कैसे मिलाएं या कैसे झुकें।
हाँ बिल्कुल,
ये तो पुनर्जागरण काल की पूरी सोच का एक आईना है। हमें दिखाता है कि उस दौर में लोग सौंदर्य, नैतिकता, राजनीति, यहाँ तक कि इंसान की क्षमताओं के बारे में क्या सोचते थे।
सही।
ये किताब एक तरह से पूछती है, भाई एक प्रभावशाली और गुणी इंसान कैसे बना जाए। और ये सवाल तो देखिए आज भी उतना ही जरूरी लगता है, शायद ज्यादा भी। पर्सनल डेवलपमेंट की बात होती है, सोशल स्किल्स की, लीडरशिप में नैतिकता की, ये सब तो आजकल हमारे जिंदगी का हिस्सा है।
बिल्कुल।
तो क्या ये गुण बस पैदाइशी होते हैं या सीखे जा सकते हैं? कैस्टिलियोन का मानना था कि इन्हें तराशा जा सकता है ना?
हाँ, उनका ये मानना था।
चलिए देखते हैं कैसे।
पहले लेखक को थोड़ा जान लें।
जरूर।
बाल्डेसर कैस्टिलियोन, इनका समय था 1478 से 1529, और ये सिर्फ कोई लिखने पढ़ने वाले विद्वान नहीं थे।
अच्छा।
जी नहीं, वो खुद एक इतालवी रईस थे, एक दरबारी, सैनिक भी रहे और एक काफी महत्वपूर्ण राजनयिक भी। मतलब उन्होंने उस दुनिया को जिया जिसके बारे में उन्होंने लिखा।
अरे वाह, तो उनका अनुभव ही इस किताब को खास बनाता होगा।
बिल्कुल।
वो उत्तरी इटली के मंटुआ के पास एक संभ्रांत परिवार से थे, है ना? और उनकी शिक्षा भी काफी अच्छी हुई थी, ग्रीक, लैटिन, साहित्य, ये सब।
जी हाँ, और सबसे अहम बात, उन्होंने इटली के सबसे शानदार दरबारों में से एक, उर्बिनो के ड्यूक के यहाँ काफी समय बताया।
उर्बिनो, हाँ सुना है, वो उस वक्त संस्कृति और कला का गढ़ माना जाता था।
एकदम सही। कहते हैं वहीं की बातचीत और माहौल ने इस किताब को जन्म दिया। वाले ऑब्जर्वर भी थे। बाद में उन्होंने पोप के लिए राजनयिक का काम भी किया, तो उन्हें सत्ता, राजनीति, इंसानी फितरत, इन सब की बहुत बारीक समझ मिली।
समझ गई। तो ये किताब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि असल अनुभव का निचोड़ है, दशकों का अनुभव।
जी, इसीलिए ये एक प्रामाणिक गाइड जैसी लगती है।
तो ये किताब आखिर है किस बारे में? इसकी बनावट भी बड़ी दिलचस्प है, सुना है।
हाँ बहुत। ये असल में उर्बिनो के महल में, साल था 1507, चार शामों तक चली एक काल्पनिक बातचीत का ब्यौरा है।
अच्छा, बातचीत।
हाँ, और इसमें भाग लेने वाले लोग भी उस समय के असली ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। पुरुष, महिला, दरबारी, विद्वान, सैनिक, वो जैसे खेल खेल रहे हैं कि भाई एक आदर्श दरबारी कैसा होना चाहिए।
वाओ, खेल खेल में इतनी गहरी बात।
बिल्कुल। और किताब का जो मूल विचार है वो ये कि आदर्श दरबारी ना सिर्फ एक योद्धा हो, ना सिर्फ एक विद्वान, वो एक यूनिवर्सल मैन हो। लोमो यूनिवर्साले कहते थे इटालियन में, मतलब एक बहुआयामी व्यक्तित्व वाला इंसान।
कई सारे गुण एक ही व्यक्ति में।
हाँ, उसमें युद्ध का कौशल हो, सोचने समझने की गहराई हो, कला की समझ हो, और हाँ, लोगों के बीच उठने बैठने का सलीका भी।
और इन सबको साधने का कोई रहस्य भी बताया उन्होंने, आपने कुछ कहा था, स्प्रिट्ज़ात्रा।
हाँ, स्प्रिट्ज़ातुरा, ये बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है इस किताब का।
स्प्रिट्ज़ातुरा, ये सुनने में ही बड़ा मजेदार लग रहा है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है एक ऐसी सहजता, या कह लीजिए एक तरह की लापरवाही का दिखावा करना।
दिखावा?
हाँ, पर अच्छे अर्थ में, जिससे मुश्किल से मुश्किल काम भी ऐसा लगे जैसे बिना किसी मेहनत के बड़ी आसानी से हो गया हो।
अच्छा, जैसे कोई बहुत अच्छा गायक गा रहा हो और लगे कि वो तो बस यूं ही गुनगुना रहा है।
बिल्कुल सही पकड़ा। ये सहज दिखने वाली उत्कृष्टता ही असली कला है, कैस्टिलियोन के हिसाब से, प्रयास को छुपा लेना।
वाह। और किताब का एक और सवाल था शायद कि इस दरबारी का मकसद क्या है, सिर्फ अच्छा दिखना या कुछ और?
बहुत जरूरी सवाल। क्या सिर्फ राजा या रानी को खुश रखना, खुद मजे में रहना? कैस्टिलियोन कहते हैं नहीं।
तो फिर?
दरबारी का असली ऊंचा लक्ष्य है अपने शासक का विश्वास जीतना, इतना विश्वास कि वो उसे सच्चाई बता सके।
सच्चाई मतलब कड़वी बातें भी?
हाँ, बिना डरे उसे नेकी और अच्छे शासन की सलाह दे सके। तो किताब बाहरी गुणों से शुरू होती है पर धीरे धीरे अंदरूनी नैतिकता और यहाँ तक कि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाती है।
कमाल है। चलिए अब इन चार शामों की बातचीत में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पहली शाम किस बारे में थी?
पहली शाम दरबारी की नींव, यानी उसके बुनियादी गुणों पर केंद्रित है।
भाग आई, दरबारी की नींव, शिष्टता और कौशल। तो पहली शाम की चर्चा कौन लीड कर रहे हैं?
काउंट लुडोविको द कैनासा। वो कहते हैं कि आदर्श दरबारी के लिए कुछ बुनियादी चीजें जरूरी हैं, जैसे अच्छा खानदान।
अच्छा खानदान, ये तो थोड़ा पक्षपाती नहीं लगा?
हाँ, आज के हिसाब से लग सकता है, पर उस जमाने में इसके व्यवहारिक कारण थे। इससे प्रतिष्ठा मिलती थी, शासक तक पहुंच आसान होती थी।
ठीक है, उस जमाने के हिसाब से। और
साथ ही एक आकर्षक व्यक्तित्व और स्वस्थ शरीर भी जरूरी माना गया, जैसे बाहरी सुंदरता अंदरूनी अच्छाई का संकेत हो।
लेकिन सिर्फ दिखने से तो काम नहीं चलेगा।
बिल्कुल नहीं, दरबारी का मुख्य पेशा तो है हथियार चलाना। उसे एक बहादुर कुशल सैनिक होना चाहिए, घुड़सवारी, तलवारबाजी, रणनीति सब में माहिर।
योद्धा होना जरूरी है?
हाँ, पर यहाँ एक संतुलन भी जरूरी है। वो जंग के मैदान में भले ही खतरनाक हो, पर आम जिंदगी में उसे सभ्य, शांत और शालीन होना चाहिए।
अच्छा, मतलब क्रूर नहीं शिष्ट।
बिल्कुल,
क्रूरता नहीं शिष्टता उसका गुण।
हाँ, और यहीं पर शायद वो स्प्रिट्ज़ातुरा वाली बात आती होगी।
एकदम सही,
काउंट लुडोविको यही इसका जिक्र करते हैं। वो कहते हैं ये हर काम में दिखना चाहिए, एक खास तरह की लापरवाही बरते, वो कहते हैं, जो कला को छुपा ले और ऐसा दिखाए कि जो भी किया या कहा गया है वो बिना किसी कोशिश के, लगभग बिना सोचे समझे हो गया है।
वाह, ये बनावटीपन से बचने की कला है, सहज दिखने की कला।
बिल्कुल,
ये तो आज भी कितना काम का है जब हम एफर्टलेस चीक या स्वाभाविक दिखने वाले परफॉर्मेंस की बात करते हैं।
बिल्कुल,
और शारीरिक कौशल के साथ साथ दिमाग की कसरत भी उतनी जरूरी है।
अच्छा,
जैसे
दरबारी को सिर्फ तलवार नहीं, कलम भी चलानी आनी चाहिए। उसे ग्रीक और लैटिन का ज्ञान हो, इतिहास, कविता, दर्शन इन सब से वाकिफ हो, अच्छी भाषा में लिख सके, बोल सके।
तो मतलब पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है?
हाँ, इससे न सिर्फ ज्ञान मिलता है बल्कि सोचने का दायरा बढ़ता है और बात करने का सलीका आता है, वाक्पटुता आती है।
और कलाओं के बारे में क्या, उनका भी जिक्र है?
जी हाँ, दरबारी को चित्रकला, मूर्तिकला की परख होनी चाहिए और सबसे जरूरी संगीत।
संगीत क्यों?
उसे कोई साज बजाना आना चाहिए, गाना आना चाहिए। कैस्टिलियन मानते थे कि संगीत आत्मा को सुकून देता है, उसे परिष्कृत करता है, इंसान को ज्यादा संवेदनशील बनाता है।
तो पहली शाम के अंत तक एक ऐसे इंसान की तस्वीर उभरती है जो योद्धा भी है, विद्वान भी, कलाकार भी,
और ये सब वो बड़ी सहजता से स्प्रिट्ज़ातुरा के साथ करता है।
कमाल है। अब दूसरी शाम पर आते हैं।
भाग दो, कौशल का अनुप्रयोग, सामाजिक आचरण और बुद्धि। दूसरी शाम की बागडोर संभालते हैं फेडरिको फ्रेगोसो। अब चर्चा इस पर होती है कि भाई ये सारे गुण तो हैं, पर इनका इस्तेमाल समाज में, दरबार में कैसे किया जाए।
हाँ, ये भी तो जरूरी है, सिर्फ काबिल होना काफी नहीं, उसे दिखाना भी आना चाहिए सही तरीके से।
बिल्कुल, ये सामाजिक बुद्धिमता, सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है। फ्रेगोसो जोर देते हैं कि अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए।
हाँ, वो तो अच्छा नहीं लगता।
अपनी उपलब्धियों को ऐसे मौके पर जाहिर होने दें जब वो स्वाभाविक लगे। खेलों में भी आप भले ही जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हो, पर दिखना ऐसा चाहिए जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं।
फिर से वही स्प्रिट्ज़ातुरा।
हाँ, और बातचीत की कला पर भी काफी जोर है।
अच्छा, कैसे?
दरबारी को माहौल और सुनने वाले के हिसाब से बात करनी आनी चाहिए। संजीदा लोगों से संजीदगी से, मजाकिया लोगों से हल्के फुल्के अंदाज में। चापलूसी से बचना चाहिए, लेकिन अगर आप सहमत नहीं है तो वो भी तहजीब से कहना चाहिए।
मतलब डिप्लोमेसी।
हाँ, कह सकते हैं। साफ और सलीके से बोलना, अच्छी कहानियां सुनाना, ये सब सामाजिक मेलजोल के अहम हिस्से हैं।
और हास्य का क्या, मजाक वगैरह?
अरे, उस पर तो कैस्टिलियन ने काफी विस्तार से लिखा है। इटालियन में शब्द है फच्चेचिए, यानी मजाक और हाजिर जवाबी।
अच्छा, क्या कहते हैं वो?
वो बताते हैं कि मजाक कैसा होना चाहिए, समझदारी भरा हो, सही मौके पर किया गया हो, और कभी भी किसी को नीचा दिखाने वाला या भद्दा ना हो।
हाँ, ये जरूरी है।
अच्छा हास्य तो बुद्धिमानी की निशानी है, वो माहौल को हल्का कर सकता है, लोगों को करीब ला सकता है।
और किन चीजों से बचने को कहा है?
कुछ चीजों से बचने की भी सलाह है, जैसे जलन, पीठ पीछे बुराई करना, झगड़ालू स्वभाव। शासक के साथ भी एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखनी चाहिए, न ज्यादा चापलूसी, न ज्यादा बेतकल्लुफी, एक सधा हुआ रिश्ता।
तो दूसरी शाम हमें ये सिखाती है कि दरबारी एक तरह का सामाजिक कलाकार है।
बिल्कुल, जो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल रिश्ते बनाने, सम्मान पाने और दरबार की जो मुश्किल दुनिया है उसमें टिके रहने के लिए करता है।
बहुत दिलचस्प। अब तीसरी शाम पर आते हैं जो महिलाओं के बारे में है।
जी हाँ, भाग तीन, आदर्श दरबारी महिला, डोना दी पलात्सो।
तीसरी शाम थोड़ी अलग है। सुना है डचेस एलिजाबेटा गोंजागा के कहने पर चर्चा का विषय बदला।
हाँ, विषय बना आदर्श दरबारी महिला, जिसे कैस्टिलियन कहते हैं, डोना दी पलात्सो, यानी महल की महिला। इस चर्चा को लीड करते हैं गिलियानो दे मेडिची।
तो क्या महिलाओं के लिए भी वही गुण जरूरी बताए गए?
काफी हद तक। गिलियानो कहते हैं कि आदर्श महिला में भी पुरुषों वाले कई गुण होने चाहिए। अच्छा खानदान, सुंदरता, बुद्धि, शिष्टाचार और हाँ, स्प्रेट्सातुरा भी।
स्प्रेट्सातुरा महिलाओं के लिए भी?
जी, उसे भी कला, संगीत, साहित्य की समझ होनी चाहिए, बातचीत में हाजिर जवाब और दिलचस्प होना चाहिए।
लेकिन कुछ फर्क भी होंगे निश्चय ही?
हाँ, कुछ फर्क भी हैं। जहाँ पुरुष दरबारी की पहचान उसकी बहादुरी और शारीरिक बल से भी है, वहीं महिला का खास गुण उसकी कोमल और नाजुक मिठास बताई गई है।
अच्छा।
और उसे ज्यादा मर्दाना कामों जैसे शिकार या हथियार चलाने से बचना चाहिए। उसकी भूमिका ज्यादातर समाज को सभ्य बनाने, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और पुरुषों को अच्छे कामों के लिए प्रेरित करने की मानी गई है।
प्रेरणा देने वाली भूमिका।
हाँ।
लेकिन क्या सब इस बात से सहमत थे दरबार में? नहीं।
अच्छा, कोई बहस हुई?
हाँ, एक किरदार हैं गैस्पारे पालाविसिनो, वो थोड़े शक जाहिर करते हैं, कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कमतर होती हैं, उनमें कुछ कमियां होती हैं।
ओ, तो फिर?
मगर जुलियानो और दूसरे लोग जोरदार तरीके से महिलाओं की बुद्धि और नैतिकता का बचाव करते हैं, इतिहास से मिसालें देकर साबित करते हैं कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर गुणी हो सकती हैं।
ये जानना अच्छा लगा। और उनके व्यवहार के बारे में क्या कहा गया?
प्रेम और व्यवहार पर भी बात होती है। दरबारी महिला को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। तारीफ सुनना ठीक है, पर किसी को गलत व्यवहार की इजाजत नहीं देनी चाहिए। उसे विवेक और शालीनता की मिसाल बनना है।
तो कुल मिलाकर यह हिस्सा हमें उस जमाने में महिलाओं की भूमिका के बारे में बताता है। हो सकता है आज हमें थोड़ा सीमित लगे।
हाँ, लग सकता है, पर यह महिलाओं को सांस्कृतिक और नैतिक केंद्र के रूप में जरूर देखता है।
ठीक है, अब आते हैं आखिरी शाम पर। लगता है ये सबसे दार्शनिक होगी। बिल्कुल, भाग फोर, दरबारी का उद्देश्य और दिव्य प्रेम की ओर चढ़ाई। चौथी और आखिरी शाम चर्चा को उसके शिखर पर ले जाती है। ओटाव्यानो फ्रेगोसो सवाल उठाते हैं, भई ये सब गुण, कलाएं, शिष्टाचार, इनका आखिर मतलब क्या है? इनका बड़ा मकसद क्या है?
हाँ, ये तो सबसे अहम सवाल है, क्या है मकसद?
और वो जवाब देते हैं कि दरबारी का असली ऊंचा मकसद है अपने शासक का सलाहकार और गुरु बनना।
गुरु?
हाँ, अपनी समझदारी, बातचीत की कला और भरोसे का इस्तेमाल करके उसे शासक को सच्चाई बतानी चाहिए, भले ही वो कड़वी हो।
बिना डरे?
बिना डरे उसे नेकी, न्याय और अच्छी हुकूमत की तरफ ले जाना चाहिए।
वाह, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो दरबारी को सिर्फ एक सजे धजे इंसान से उठाकर एक नैतिक मार्गदर्शक और राजनीतिक दार्शनिक बना देता है।
बिल्कुल, और इसी कड़ी में ये भी चर्चा होती है कि सबसे अच्छी सरकार कौन सी है, राजशाही या गणराज्य।
क्या नतीजा निकलता है?
नतीजा ये निकलता है कि एक नेक राजा की हुकूमत सबसे अच्छी है और दरबारी का काम ऐसे नेक राजा को बनाने में मदद करना है। और फिर आता है किताब का शायद सबसे यादगार और ऊंचा हिस्सा।
कौन सा?
रात ढल रही है, भोर होने वाली है और चर्चा प्रेम के स्वरूप पर पहुंचती है। तब महान विद्वान पियत्रो बेम्बो प्रेम पर एक अद्भुत भाषण देते हैं जो नव प्लेटोवादी विचारों से प्रेरित है।
नव प्लेटोवादी यानी प्लेटो के विचारों पर आधारित?
हाँ, वो कहते हैं कि प्रेम एक सीढ़ी की तरह है।
सीढ़ी?
हाँ।
कैसे?
शुरुआत होती है किसी एक इंसान की शारीरिक सुंदरता के आकर्षण से, ये स्वाभाविक है, लेकिन एक समझदार और परिपक्व इंसान खासकर उम्र के साथ इस आकर्षण को एक शुरुआती बिंदु की तरह इस्तेमाल करता है।
अच्छा, फिर?
वो धीरे धीरे शारीरिक सुंदरता से आगे बढ़कर आत्मा की सुंदरता, विचारों की सुंदरता और फिर पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई जो अमूर्त दिव्य सुंदरता है उसकी तरफ बढ़ता है।
शारीरिक से मानसिक फिर आध्यात्मिक?
बिल्कुल, बेम्बो कहते हैं कि इस रास्ते पर चलकर आत्मा अंततः उस परम सौंदर्य का स्रोत यानी ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करती है।
ये तो बहुत गहरी बात है।
हाँ, ये आध्यात्मिक ऊंचाई पूरी किताब को एक नया मतलब दे देती है। सुंदरता की खोज, चाहे वो शरीर की हो, कला की या व्यवहार की, आखिर में आत्मा को ऊपर उठाने का रास्ता बन जाती है।
और किताब सुबह के उजाले के साथ खत्म होती है।
हाँ, जो मानो ज्ञान और आत्मा के जागरण का प्रतीक है।
सच में, ये किताब बाहरी दुनिया से शुरू होकर अंदर की गहराइयों तक ले जाती है। अगर हम इसके मुख्य संदेशों को समेटें तो क्या बातें सामने आती हैं?
कई अहम बातें हैं, मुख्य विषय और संदेश।
सबसे पहले तो वही स्प्रेत सातुरा याद आता है।
हाँ, वो तो है ही, सहज उत्कृष्टता की कला। ये शायद सबसे अनोखा और मशहूर विचार है इस किताब का, मेहनत को छुपाकर नतीजे को सहज दिखाना।
और ये आज भी कितना दिखता है, जो लोग मुश्किल काम आसानी से करते दिखते हैं वो ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं, जैसे कोई बड़ा खिलाड़ी खेल रहा हो या कोई कुशल वक्ता बोल रहा हो।
बिल्कुल। दूसरा, वो यूनिवर्सल मैन या सर्वांगीण व्यक्ति का आदर्श। कैस्टिलियोन एक ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं जो कई चीजों में माहिर हो, योद्धा, विद्वान, कलाकार, सामाजिक रूप से कुशल।
ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ एक चीज में एक्सपर्ट होना काफी नहीं, जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को विकसित करना भी जरूरी है, आजकल जिसे होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं।
सही कहा। तीसरा, शिष्टाचार का नैतिक उद्देश्य, ये बहुत जरूरी है। दरबारी के सारे गुण सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, उनका असली मकसद है शासक को सही सलाह देना, उसे न्याय और अच्छाई के रास्ते पर लाना।
ये स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर वाली बात।
हाँ बिल्कुल, ये बात आज के कॉरपोरेट या राजनीतिक माहौल में भी उतनी ही लागू होती है। सिर्फ काबिलियत नहीं, नैतिक साहस भी जरूरी है।
और चौथा, वो प्रेम की सीढ़ी वाला विचार, नव प्लेटोनिक।
जी, ये प्रेम को सिर्फ शारीरिक आकर्षण से ऊपर उठाकर एक आध्यात्मिक यात्रा बना देता है। सुंदरता के जरिए सत्य और ईश्वर तक पहुंचना, ये हमें याद दिलाता है कि दुनियावी चीजों में भी गहरा अर्थ खोजा जा सकता है।
पांचवां, महिलाओं की वो सभ्यता लाने वाली भूमिका, डोना दी पलाज्जो।
हाँ, हालांकि ये विचार उस जमाने के हैं, पर ये महिलाओं को समाज में संस्कृति और नैतिकता का केंद्र मानते हैं। वो पुरुषों को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। आज भले ही भूमिकाएं बदल गई हों, पर समाज में आपसी सम्मान और प्रेरणा का महत्व तो हमेशा रहेगा।
छठा, वो बनावट बनाम प्रामाणिकता का सवाल भी उठता है, क्या स्प्रेत सातुरा एक तरह का धोखा है?
अच्छा सवाल है। कैस्टिलियन शायद कहेंगे कि शुरुआत में ये एक कला हो सकती है, पर धीरे धीरे ये आपका स्वभाव बन जानी चाहिए। बाहरी शिष्टाचार अंदरूनी अच्छाई का प्रतिबिंब होना चाहिए, सिर्फ एक मुखौटा नहीं।
ये आज के पर्सनल ब्रांडिंग के दौर में सोचने लायक बात है।
बिल्कुल। और अंत में, बातचीत और भाषा की ताकत।
हाँ, पूरी किताब ही एक संवाद है।
सही, ये दिखाती है कि अपनी बात कहने का सलीका, हाजिर जवाबी और दूसरों को कायल करने की क्षमता कितनी जरूरी है। समाज में रिश्ते बनाने से लेकर सत्ता को प्रभावित करने तक भाषा एक शक्तिशाली औजार है।
इस किताब में कुछ यादगार बातें भी हैं शायद, जिन्हें हम आज भी याद रख सकते हैं।
हाँ, बहुत सी हैं। उल्लेखनीय विचार सार रूप में, कुछ मुख्य विचारों का सार दोहराते हैं। एक, स्प्रेत सातुरा पर, सच्ची कला वो है जो कला जैसी न लगे, हर काम सहजता से करो जिससे मेहनत छिप जाए,
यानी सहजता ही महारत है।
दो, दरबारी के लक्ष्य पर, दरबारी का असली काम शासक का दिल जीतना है ताकि वो उसे सच बता सके और नेकी की राह दिखा सके,
मतलब कौशल का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए।
तीन, प्रेम की यात्रा पर, सुंदरता की प्रशंसा आत्मा को ऊपर उठाती है, भौतिक से दिव्य की ओर ले जाती है, ईश्वर तक।
सुंदरता एक आध्यात्मिक रास्ता बन सकती है।
चार, ज्ञान की जरूरत पर, जिसके पास ज्ञान नहीं वो ना अच्छा बोल सकता है ना लिख सकता है, उत्कृष्टता ज्ञान से ही आती है,
ज्ञान ही बुनियाद है।
पांच, शिक्षा की महत्व पर, बिना पढ़ाई लिखाई के कोई सही मायने में दरबारी नहीं बन सकता,
सीखना जरूरी है। ये विचार तो आज भी कितने प्रासंगिक लगते हैं।
हाँ बिल्कुल, सहजता का मतलब आलस्य नहीं बल्कि महारत है, और कौशल का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए करना, ये आज भी लीडरशिप का अहम सबक है।
तो इन सदियों पुराने विचारों को हम आज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग? स्प्रेत सातुरा को ही लें, इसे हम आज की भाषा में शायद स्वाभाविक दिखना कह सकते हैं।
हाँ कह सकते हैं।
अपनी नौकरी में, प्रेजेंटेशन देते समय या सामाजिक मौकों पर अगर हम तैयारी के बावजूद स्वाभाविक और आत्मविश्वास से भरपूर दिखें तो ज्यादा असरदार होते हैं, भरोसेमंद लगते हैं।
सही बात है। और वो सर्वांगीण विकास वाली बात, आज की स्पेशलाइजेशन की दुनिया में भी अलग अलग चीजों में रुचि रखना, पढ़ना, कलाओं को समझना हमें ज्यादा संतुलित और रचनात्मक बनाता है।
ये लिबरल आर्ट्स या उदार कला शिक्षा के महत्व जैसा है, आलोचनात्मक सोच, संवाद कौशल विकसित करना।
बिल्कुल। और वो नैतिक नेतृत्व वाली बात भी बहुत अहम है, अपने बॉस या सीनियर्स को ईमानदारी से फीडबैक देना, लेकिन सलीके से ताकि बात सुनी जाए। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है।
हाँ, कैसे एक प्रभावी और भरोसेमंद सलाहकार बना जाए, ये सीखने को मिलता है।
और सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, लोगों से घुलना मिलना, उनकी बातें समझना, सही मौके पर सही बात कहना, थोड़ा हास्य का प्रयोग करना, ये सब आज भी नेटवर्किंग, टीम वर्क और रिश्ते बनाने के लिए जरूरी स्किल्स हैं।
किताब इसकी अहमियत 500 साल पहले बता रही थी।
जी। साथ ही जीवन में गहरा अर्थ खोजना, सिर्फ बाहरी सफलता या चीजों के पीछे ना भागकर ज्ञान, न्याय, सुंदरता जैसे ऊंचे आदर्शों की तलाश करना, जैसा बाम्बो ने सुझाया, एक आंतरिक जीवन विकसित करना।
तो इस किताब से हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या रहा, अंतिम सीख? मेरे लिए शायद ये कि सच्ची उत्कृष्टता में बाहरी रूप रंग, ज्ञान और नैतिकता सब एक साथ जुड़े होते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं ये जरूरी नहीं, कैसे करते हैं ये भी उतना ही मायने रखता है।
हाँ, और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख है लगातार खुद को बेहतर बनाने का विचार, सीखना कभी बंद न करना, अपने शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों को साधना, और ये समझना कि हमारी काबिलियत के साथ एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी आती है।
खुद को एक कलाकृति की तरह तराशना, लेकिन दुनिया की भलाई के लिए।
बिल्कुल।
और एक आखिरी सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, क्या स्प्रित्ज़ातुरा जैसी धीमी कला यानी सहज दिखने वाली उत्कृष्टता को साधने के लिए वाकई कोई जगह है? और अगर है तो हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकथ्य फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।